جیلوں کے حوالے سے میرا امیر اہل سنت سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لیے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری جو ہیں وہ بن سکیں.
ماشاءاللہ, جیل خانے کو اصلاح خانہ بنانا ہے, سبحان اللہ. دیکھیں کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے. تو اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اصلاح خانے بن سکتے. پھر یہ درود پاک کا سلسلہ, تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر دار دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی ہے. دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ کے جو بھی اصول ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, ان کی ہم سے آپ پابندی کروائیں اور ان قواعد کے تحت, ان قواعد کی فریم میں ہم کو رکھیں, مگر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے. اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں, اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ, جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی. اس طرح کے مبلغین بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے, اور جیل میں اسلامی بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی, ان پر انفرادی کوششیں کی گئیں, تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے. تو اس طرح آپ تعاون کرتے رہیں, خود بھی کوششیں کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی. ظاہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیریس ہوں, مجھے بس یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ میں نے ایسے سے قصے سنے کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ بیچارے بند ہوتے ہیں بے قصور. یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا, اور وہ پھر وارننگیں ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب ہے کہ قاتل چاہیے, قاتل کو گرفتار کیا جائے. اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے. اب اصل مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا, وہ بھاگ جاتا ہے, تو پھر بعض اوقات کسی نہ کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم ہے, اور اس کو پکڑ کے بیچارے کو جیل میں بند کر کے اس پہ کیس بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر کے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ یہ چیٹی بھرتے بول چی چی وہ نہیں بولے گا, زور سے چیٹی مارتے تو اس کے منہ سے نکل جائے گا چی, کہ وہ ایک چیٹی سے چی نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا, اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے برسانا, کون قبول نہیں کرے گا. تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں, اس جیل میں ہو رہے ہیں اس جیل میں ہو رہے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے ہیں, جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے. تو یوں بےچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں, قبول کر لیا اب مرا, قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا, کہ ایسا مارتے ہیں کہ بعض وقت مر جاتا ہے. بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں اگلوانے میں اتنی پٹائی کی جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی تو وہ جنگل میں لاش ملی تو نالے میں لاش ملی. میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اور میں مطلب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بلکہ سانپ کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس وقت یہ لاشیں وہ ہوتی ہیں. इसी के घर का वो सहारा होता है। जो बेकसूर पकड़ा गया अब वो कबूल क्या करे। अब मुझे बोला जाए कि भाई तूने उसको कत्ल किया है तो मैं लाख कसमें खाऊं कि भाई मुझे तो रिवॉल्वर पकड़ना ही नहीं आती। ये हकीकत बोलता हूं, मैंने आज तक जिंदगी में इलियास कादरी ने कभी गोली चलाई ही नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैंने चलाई नहीं। अब मुझे अब मारा जाएगा तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने तो बम मारा है, गोली क्या। यूं मतलब तो ये लाशें जो मिलती है ना इधर उधर, तो बाज औकात सारी लाशें नहीं, बाज औकात ये वो लाशें होती हैं, अखबारों में भी खबरें होती हैं कि इसके जिस्म पर वो ज्यादती के निशान, मारपीट के निशानात थे। तो ये वो मारपीट के निशानात होते हैं। अल्लाह ताला इन मजलूमों की मगफिरत फरमाए जो इन दरिंदों के हाथों में आ जाते हैं, जो बेचारों को इस तरह जुल्मन मार देते हैं। और हदीस शरीफ में है कि मजलूम की भी मदद करो और जालिम की भी मदद करो। उस जालिम की मदद कर कैसे हो, जब अर्ज किया गया तो फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोको, तो मैं जालिमों की मदद कर रहा हूं उस वक्त कि जुल्म से रुक जाओ, वरना जब गजब खुदावंदी का कोड़ा पड़ेगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। चाहे इलियास कादरी को तुम फंदा डाल के लटका दो, तुम बच नहीं सकते। वो जेलर हो, वो पुलिस वाला हो, खा फौजी हो, का वजीर हो, कोई सा भी शरीर हो, वो बच नहीं सकता। जब तक असलिया पास है, कुव्वत ताकत और ओधा इख्तदार है, बंदा इसके नशे में बदमस्त होकर जुल्म करता है, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ये मुहावरा है कि जब वो गैबी लाठी पड़ती है, जब कहरे खुदावंदी का जब कोड़ा पड़ता है तो फिर कोई नजर नहीं आता। कब्रों में गड़ जाते हैं, कब्र में न कोई सियासी पार्टी किसी को बचा सकती है, ना हुकूमती पार्टी बचा सकती है, ना अरबाब इख्तदार बचा सकते हैं, ना हिजबे इख्तलाफ वाले बचा सकते हैं, ना लीडर बचा सकता है, ना बाप बचा सकता है, ना दौलत बचा सकती है, ना बैंक बैलेंस बचा सकता है, ना इसके प्लाट बचा सकते हैं, ना बाल बच्चे बचा सकते हैं। कोई भी फिर कहरे खुदावंदी से बचाने वाला नहीं होता। तो मुझे इसका बड़ा दर्द है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। तो मैंने ऐसी खबरें सुनी है कि बेचारों के अंदर में होते मजलूम है। जब इन्हें आप जैसे को मेरे ऐसे कोई कहेगा कि मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे इस तरह लाया गया है, अभी हमको क्यों कहेगा कि हमारी अप्रोच कितनी, हम थोड़ी इसको छुड़ाएंगे। ना ये बोलते हैं कि हमारी मदद करो, हमको छुड़ाओ, दुआ का बोलते हैं जैसे इस तरह के। आप बताइए कि इसकी माँ मर जाती, इसको पता नहीं चलता, बीवी मर जाती, इसको पता नहीं चलता, बच्चा मर जाता है, इसको पता नहीं चलता। ये जेल के अंदर उसके रात दिन एक होते बेचारे के, ना ईद ना बारात कुछ भी उसको नहीं पता चलता, सारा घर उजड़ जाता है पीछे से। बरसों तक ये बेचारे पड़े रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ना पैसे होते हैं कि रिश्वत देकर कुछ आसानियां करे एक जुल्म से बचने के लिए। ये अगर बगैर रिश्वत के जुल्म से नहीं बच सकता तो इसके लिए रिश्वत देना जायज है। तो ये भी नहीं होता बेचारे के पास, इन जालिमों के, इन कुत्तों के मुंह में हड्डी ठोंसे कि कुछ इसको आसानी, कुछ भी नहीं होता। उसके पहने हुए कपड़े भी जेल के होते, सारा बेचारा तबाह हो जाता है। कारोबार था तो वो भी गया, नौकरी थी तो वो भी गई, सब मेरे के बेचारा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह ये जो लोग कर रहे हैं, वो कोई भी कर रहे हैं, उन सबको इस पर गौर करना चाहिए। और ऐ मेरे जेल के वो अफसरों जिनके दिल में खौफ खुदा है, अगर तुम्हारे जेल में ऐसा है, कोई ऐसी सूरत निकालो, कुर्बानी दो, कोई 2-500 हजार रुपए खर्च कर दो इस पर, जो भी मतलब तरकीब ऐसों को निकालो, इनकी नस्लें आपको दुआएं देंगी कि इस खुशनसीब जेलर ने, इस खुशनसीब अफसर ने, इस खुशनसीब पुलिस के अफसर ने, इस फौजी अफसर ने, इस गवर्नमेंट के अफसर ने, या फुला मतलब यानी कि पार्टी के लीडर ने मेरे मजलूम बाप को जेल से रिहाई दिलाई थी, इनकी दुआएं लो यार। आप कोशिश करें, मेरा बस चलता तो ऐसों को ढूंढ ढूंढ के मैं बाहर निकलवा लाता। अपनी तो अप्रोच ही नहीं है ना इस सिलसिले में। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ भी करते हैं, बहुत दिल जलता है मेरा उन मजलूमों के लिए जो इस तरह पड़े हैं। या बाजों का जुर्म छोटा होता है, सजा रिश्वतें देकर उसकी ज्यादा दिलाई जाती है। तो ये रिश्वतें देते हैं जो इस तरह के मजलूमों को जो पकड़वाते हैं, ये भी जुल्म में पूरे पूरे साथ है। ये नहीं कि मतलब खाली जो पकड़ के ले गया वही मुजरिम है। ये पार्टियां जो होती है ना मालदार लोग, ये इंतकाम लेने के लिए भी बेकसूरों को बाजूगत पकड़वा देते हैं, इस पर कसूर डाल देते हैं और ये पकड़ा जाता है। घरों में असलाह फेंक देते हैं, पुलिस छापा मारती है, निकलता है असलाह, उसको भले पकड़ना भी ना आता हो, घर से निकला, रंगे हाथों पकड़ा है हमने, अखबार में फोटो आ जाती है, असलाह इसके सामने रखा हुआ है, इस बेचारे का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। बाद होगा ये भी, यानी बहुत कुछ होता है। अल्लाह करे के हमारे मुल्क से जुल्म का खात्मा हो जाए, महंगाई भी चली जाएगी, बिजली के मसाइल भी हल हो जाएंगे और तंग दस्तियां भी दूर हो जाएंगी, हम सब खुशहाल हो जाएंगे, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे। लेकिन जुल्म का खात्मा होना चाहिए, बाकी बड़े बड़े दावों से होना कुछ भी नहीं है। खाली दावों से काम नहीं होता, अमली इकदाम कीजिए, अल्लाह ताला का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए कि कल जालिम होगा उसका गरीबान होगा, मजलूम का हाथ होगा। कि कयामत के रोज मजलूमों की चांदी है, मजलूमों का राज है, वो जालिमों को पकड़ रहे होंगे और अपना हक वसूल कर रहे होंगे। उस वक्त जालिम को कोई उसका बड़ा जालिम बचाने नहीं आएगा, तो वो इससे ज्यादा मुसीबत में कयामत के रोज गिरफ्तार होगा। ऐ जालिमो, ये मत समझो कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम इतने साल के हुए कुछ नहीं हो रहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें ढील दी जा रही है, कहीं तुम संभल जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकारे मदीने मुनव्वरा सरदारे मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल जालिम को मोहलत देता है, यहां तक कि जब उसको अपनी पकड़ में लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। ये फरमाकर नबियों के ताजवर मदीने के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पारा 12 सूरह हूद की आयत नंबर 102 तिलावत फरमाई, كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد। मेरे आका नियमत इमाम आले सुन्नत अजीम बरकत अजीम मर्तबत परवान ए शम्पे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अले रहमतुर रहमान अपने शोहराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान पे इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, ऐसी ही पकड़ है तेरे रब अज़्ज़ा वजल की जब बस्तियों को पकड़ता है उनके जुल्म पर, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक करी है, बहुत शदीद पकड़ है, सख्त पकड़ है उसकी, फिर दुनिया की कोई ताकत छुड़ा ही नहीं सकती। इससे पहले के इस पकड़ में आ जाओ, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा कर, तौबा के तकाजे पूरे कर लो और जुल्म से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें अल्लाह के कहर व गजब से बचाने वाला कोई ना होगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।